आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
नमस्कार, आकाशवाणी के कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं करिश्मा राय। आज के कार्यक्रम का विषय है भारत की रक्षा शक्ति, आत्मनिर्भरता से सशक्त राष्ट्रीय सुरक्षा। किसी भी देश की सुरक्षा के लिए मजबूत रक्षा व्यवस्था जरूरी है। आज के समय में रक्षा क्षमता का मतलब केवल हथियार और सैनिक नहीं है, इसमें आधुनिक तकनीक, अनुसंधान, उत्पादन और आत्मनिर्भरता भी शामिल है। पिछले एक दशक में भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। देश ने रक्षा उत्पादन बढ़ाने और विदेशों पर अपनी निर्भरता कम करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशीय तकनीक और देश में ही रक्षा उपकरण बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसका असर रक्षा बजट और रक्षा उत्पादन में भी दिखाई देता है। तो सवाल है कि भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता किस तरह मजबूत हो रही है, इसी को समझने की कोशिश करेंगे आज के विश्लेषण में। आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली रिपोर्ट से।
भारत के रक्षा क्षेत्र में बदलाव का एक बड़ा आधार है बढ़ता निवेश। रक्षा बजट में पिछले एक दशक में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2013-14 में रक्षा बजट 2.53 लाख करोड़ था। वर्ष 2026-27 में यह बढ़कर 7.85 लाख करोड़ हो गया, यानी रक्षा बजट में 3.1 गुना वृद्धि हुई है। इसी तरह पूंजीगत व्यय भी बढ़ा है। वर्ष 2014-15 में पूंजीगत व्यय 94,587.95 करोड़ था। वर्ष 2026-27 में यह बढ़कर 2.19 लाख करोड़ हो गया। इसका सीधा संबंध सेना के आधुनिकीकरण से है। नई तकनीक, नए उपकरण और आधुनिक सैन्य प्रणालियों के लिए अधिक धन उपलब्ध कराया जा रहा है। अब बात रक्षा उत्पादन की। वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ तक पहुँच गया। इसमें रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं का योगदान 76% था, वहीं निजी क्षेत्र का योगदान 24% रहा। रक्षा निर्यात में भी तेज बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2013-14 में भारत का रक्षा निर्यात केवल 686 करोड़ था। वर्ष 2025-26 में यह बढ़कर 38,424 करोड़ हो गया, यानी 12 वर्षों में रक्षा निर्यात में 5,500% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत अब 80 से अधिक देशों को रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। सरकार ने वर्ष 2029 तक हर साल 3 लाख करोड़ का रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ का रक्षा निर्यात करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए केवल बड़े सरकारी संस्थानों पर निर्भर नहीं किया जा रहा है। निजी कंपनियों, स्टार्टअप और छोटे उद्योगों को भी रक्षा क्षेत्र में जोड़ा जा रहा है। रक्षा अनुसंधान और विकास के लिए भी बजट बढ़ाया गया है। वर्ष 2022-23 से रक्षा अनुसंधान और विकास बजट का 25% हिस्सा उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा जगत के लिए खोला गया है। इसका उद्देश्य है कि नई तकनीक देश में ही विकसित हो। इसी दिशा में रक्षा परीक्षण पोर्टल यानी DTP भी काम कर रहा है। इस पोर्टल के जरिए DRDO की 24 प्रयोगशालाओं में उपलब्ध परीक्षण सुविधाओं तक घरेलू कंपनियों, स्टार्टअप और उद्योगों को पहुंच मिल रही है। इससे देश में नई रक्षा तकनीक बनाने और उसकी जांच करने की प्रक्रिया आसान हो गई है।
रक्षा उत्पादन बढ़ाने के साथ यह भी जरूरी है कि देश में बने रक्षा उपकरणों की खरीद को बढ़ावा मिले, इसलिए सरकार ने रक्षा खरीद की प्रक्रिया में भी कई बदलाव किए हैं। आइए जानते हैं इस दिशा में उठाए गए कदमों के बारे में हमारी अगली रिपोर्ट में।
भारत की रक्षा खरीद में स्वदेशी सामान को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। रक्षा खरीद की सबसे बड़ी संस्था रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC ने DRDO द्वारा डिजाइन और भारतीय उद्योग द्वारा बनाए गए नए रक्षा सिस्टम के लिए 6 लाख करोड़ से अधिक की आवश्यकताओं को मंजूरी दी है। इनमें 62,000 करोड़ के 97 Tejas MK-1A लड़ाकू विमान शामिल है। इसके अलावा 62,700 करोड़ के 156 LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर भी शामिल है। इन खरीदों से भारतीय कंपनियों को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में और काम मिलेगा। साथ ही देश में एरोस्पेस और रक्षा निर्माण की क्षमता भी बढ़ेगी। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 ने भी स्वदेशी खरीद और देश में रक्षा सामान बनाने पर जोर दिया। इसने रक्षा डिजाइन, विकास और उत्पादन में भारतीय कंपनियों के लिए अवसर बढ़ाए हैं। वहीं रक्षा खरीद प्रक्रिया 2016 ने मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने की नींव रखी है। रक्षा खरीद नियमावली 2025 के जरिए राजस्व खरीद में 1,00,000 करोड़ की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। इसमें जल्द मंजूरी, स्वदेशी परियोजनाओं के लिए कुछ दंड में छूट और लंबे समय के आदेश जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। अब रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2026 का मसौदा भी तैयार किया गया है। इसमें खरीद की श्रेणियों को आसान बनाने और देश में डिजाइन और विकास को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। इसमें रक्षा सामान में 60% तक स्वदेशी सामग्री की जरूरत का भी प्रस्ताव किया गया है। रक्षा क्षेत्र में नए विचारों और तकनीक को बढ़ावा देने के लिए IDEX योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी तरह अदिति योजना के लिए 750 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह योजना नई रक्षा तकनीकों को विकसित करने के लिए आर्थिक मदद देती है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के तहत रक्षा तकनीक के विकास के लिए 50 करोड़ तक का अनुदान दिया जा सकता है। जून 2026 तक 334 करोड़ की 80 परियोजनाएं लागू की जा रही थी। इन योजनाओं का मकसद है कि देश के युवाओं, स्टार्टअप और कंपनियों को रक्षा क्षेत्र में नई तकनीकी बनाने का मौका मिले।
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता केवल नई तकनीक बनाने तक सीमित नहीं है। पुरानी तकनीक को आगे बढ़ाना, उसे भारतीय उद्योग को देना और देश में जरूरी सामान बनाना भी उतना ही जरूरी है। इसी दिशा में तकनीक के हस्तांतरण, स्वदेशीकरण और सैन्य इस्तेमाल पे भी जोर दिया जा रहा है। आइए जानते हैं इसके बारे में हमारी अगली रिपोर्ट में।
भारत में रक्षा सामान के स्वदेशीकरण के लिए कई कदम उठाए गए हैं। DRDO के विकास सह उत्पादन भागीदार ढांचे के तहत 134 साझेदार कंपनियों को तकनीक हस्तांतरित की गई है। अब तक 2180 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। मार्च 2026 तक उद्योगों के इस्तेमाल के लिए 2780 से अधिक IPR खोले गए हैं। इससे भारतीय कंपनियों को नई रक्षा तकनीक पर काम करने का मौका मिल रहा है। स्वदेशी रक्षा सोर्सिंग को बढ़ावा देने के लिए सृजन डिफेंस इक्विपमेंट एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म भी काम कर रहा है। मई 2026 तक इस प्लेटफॉर्म पर 41,000 से अधिक विक्रेता और 2,70,000 उत्पाद सूचीबद्ध किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ने अप्रैल 2026 तक 42,057 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धताएं आकर्षित की थीं। तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ने 32,699 करोड़ रुपए की निवेश बोलियां आकर्षित की थी। लखनऊ में ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा ने मिसाइलों का निर्माण शुरू कर दिया है। रक्षा व्यापार को आसान बनाने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। क्षेत्र में FDI की सीमा स्वचालित मार्ग से 74% और सरकारी मार्ग से 100% तक की गई है। भारत ने अग्नि 4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और अग्नि 5 लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इनसे इन मिसाइलों की तकनीकी और परिचालन क्षमता की पुष्टि हुई है। वायु रक्षा के क्षेत्र में DRDO ने कुछ लंबी दूरी की वायु रक्षा मिसाइल और बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली यानी VSHORADS जैसी प्रणालियों पर काम किया है। अब बात करते हैं समुद्री सुरक्षा की। भारतीय नौसेना ने INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वाक्शीर सहित 12 युद्धपोतों तथा पनडुब्बियों को कमीशन किया है। स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। इनसे समुद्री निगरानी और सर्वेक्षण की क्षमता मजबूत हुई है। इन उपलब्धियों से पता चलता है कि भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता अब केवल उत्पादन और अनुसंधान तक सीमित नहीं है। निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार।
भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की यह यात्रा अभी भी जारी है। इसका लक्ष्य केवल आज की जरूरतों को पूरा करना ही नहीं है। आने वाले वर्षों में नई और जटिल सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारत अपनी तकनीकी और औद्योगिकी क्षमता को और मजबूत करना चाहता है। वर्ष 2047 तक भारत को एक आधुनिक और तकनीकी रूप से मजबूत रक्षा शक्ति बनाने की दिशा में यह प्रयास महत्वपूर्ण है। साथ ही भारत दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी एक भरोसेमंद रक्षा साझेदार बने। वर्ष 2047 की ओर बढ़ते भारत के लिए एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ तकनीक, उद्योग, रोजगार और निर्यात को भी बढ़ावा दे सकता है। इसी उम्मीद के साथ आज के विश्लेषण कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारी सहयोगी श्रेया पाठक ने। तकनीकी सहयोग दिया है मोहित सिंह ने। नमस्कार।